आवाज दी, मैंने खुद को तब आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तब आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी मुझे हर दिन ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। रूहानी क्रांति के सूत्र कि आज हम सातवें पड़ाव में पहुंचे हैं। संसार में क्रांति की जरूरत क्यों होती है? संसार के लोग क्रांति क्यों करते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने पद की, अपनी पोजीशन की, अपनी बल की दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को सताते हैं, तंग करते हैं, शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, पापाचार करते हैं, तब उनके विरोध में जिन पर शोषण करते हैं उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, वार्ता करते हैं, वार्ता करने के बाद, अनेक बार समझाने के बाद भी अगर सामने वाला व्यक्ति, शोषण करने वाला व्यक्ति, अगर वो तंग करते ही रहते हैं, शोषण करते ही रहते हैं, तब क्रांति की शुरुआत होती है। उसी तरह देह अभिमान और देह अभिमानी के सैनिक साथी मिलकर के हम रूहानी आत्माओं को, रूहानी पिता के बच्चों को, अभी से नहीं द्वापर युग से हमें शोषण किया है, प्रीत किया है, दमन किया है, दबाया है, धमकाया है, अपने बस में रखा है। इतनी वार्ता करने के बाद, इतनी समझाने के बाद भी देह अभिमान और उनके सैनिक साथी नहीं समझा, नहीं माना है। इसलिए वर्तमान समय रूहानी पिता को ये देखा नहीं जा रहा है कि हमारे बच्चे को इतना शोषण कर रहे, दमन कर रहे हैं, सता रहे हैं। इसीलिए रूहानी पिता हम बच्चों को अभी क्या कह रहे हैं कि रूहानी क्रांति करने के लिए आज्ञा दिए हैं, विद्रोह करने के लिए कहे हैं। इसीलिए क्रांतिकारी को कभी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। जब तक क्रांतिकारी को जब अपने सफलता नहीं मिलते तब तक सोते नहीं हैं। हम भी रूहानी क्रांतिकारी है। जब तक देह अभिमान, पांच विकार और उनके साथी सैनिक पे हम विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम लगे रहेंगे। आज की जो रूहानी क्रांति के जो सूत्र है, रूहानी एनर्जी, क्रांतिकारी बनने के लिए उनके कई सारे स्टेप्स होते हैं। उनमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है, कैसे युद्ध करना है, कैसे शस्त्र को चलाना है, कैसे सामने वाले दुश्मन से बचना है, कैसे उनको वार करना है, कैसे मारना है, कैसे विजय प्राप्त करना है, हर चीज़, कैसे जाना है, कैसे आना है, कहाँ से उन पर शूट करना है, सारा वो होता है उनका। उसी तरह हमें भी पूरा योजनाबद्ध काम करना होगा। ऐसे सीधे अगर धराम से अगर युद्ध किया तो हम नहीं जीत पा सकते हैं। आज की जो क्रांतिकारी सूत्र है, रूहानी एनर्जी, जो कि 7383 के मुरली से लिया गया है, 82 मुरली के हेडिंग है, संकल्पों के धैर्यवत बनाने से लाभ, संकल्पों को धैर्यवत बनाने के लाभ। संकल्प की गति को धैर्यवत बनाने की लाभ बनाने से लाभ। इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को किस रूप में देखा है, हम बच्चों को बाबा देख रहे हैं एक बाप दूसरा न कोई, एक नाम्य और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों की भाग्य की श्रेष्ठ रेखा को देख रहे हैं। हम कौन बच्चे हैं, एक बाप दूसरा न कोई हमारे जीवन में, एक नामी और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले जो हम बाबा के बच्चे हैं, उन बच्चों की बाबा भाग्य की रेखा, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा देख रहे हैं। दुनिया में भाग्य की रेखा देखते हैं, लेकिन हस्त रेखा देख के उनके गुण का, उनके कर्तव्य के, उनकी विशेषताओं की महिमा करते हैं। परंतु बाप दादा उनके हस्त रेखा नहीं देखते हैं, बाप दादा उनकी मस्तक की रेखा, नैनों की रेखा और मुख की रेखा के स्पीड के स्टेज देखते हैं। हम अपने आप को टटोल सकते हैं, देख सकते हैं, रूहानी क्रांतिकारी हैं हम, हम माया के साथ युद्ध करने वाले हैं, कभी हम धोखे से उनसे दोस्ती तो नहीं कर रहे हैं, अपनी मस्तक में हम उनको तो नहीं स्मृति में ला रहे हैं, अपने मुख द्वारा उनकी बोल तो नहीं बोल रहे हैं, अपने नैनों से उनको देखने की इच्छा तो नहीं होती है, उनसे प्यार करने की इच्छा तो नहीं होती, वो हम देख सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें छोड़ना होगा। बाबा मस्तक में स्मृति स्वरूप की रेखा देख रहे हैं, नैनों में ज्वाला रूप की रेखा देख रहे हैं और मुख में मुस्कान न्यारापन मुस्कान की कमल पुष्प समान स्थिति को देख रहे हैं। तो मस्तक में स्मृति स्वरूप हम कितने बाबा को याद में कितनी बाबा की याद में रहते हैं, कितनी बाबा के कर्तव्य को हम याद में लाते हैं, कितनी आत्मिक स्थिति में स्थित होके रहते हैं, कितना ईश्वरीय मर्यादा को स्मृति में रखते हैं, वो बाबा देख रहे हैं। हमारे नैनों से कौन सी ज्वाला रूप, तप की ज्वाला रूप, त्याग की ज्वाला रूप, वैराग की ज्वाला रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो बाबा देख रहे हैं। हमारे जीवन में मुस्कान है या मुरझाइश है, हमारे जीवन में न्यारापन है और अटैचमेंट है, हमारे जीवन कमल फूल समान न्यारा प्यारा है कि नहीं, वो बात को देख रहे हैं। दुनिया में डॉक्टर के पास जब मरीज आते हैं तो नब्ज को देख के उनकी बीमारी की पता लगाते हैं, पहले के जमाने में नाड़ी वैध हुआ करते थे। बाप दादा हम बच्चों की कौन सी नाड़ी देख रहे हैं, मस्तक में स्मृति की नाड़ी देख रहे हैं। स्मृति की नाड़ी देख के बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को कि बच्चे आपकी संकल्पों की गति धैर्यवत होना चाहिए। एक मिनट में एक संकल्प चलना, एक मिनट में एक संकल्प से के से साथ अनेक संकल्प न चलना, संकल्पों की धैर्यवत गति है। अगर एक संकल्प से एक संकल्प, एक संकल्प से एक संकल्प चलते ही रहना, चलते ही रहना, संकल्पों की गति को, संकल्पों की एनर्जी को वेस्ट करना है, बाबा बता रहे हैं। जैसे अति बोलने वाले या जोर से बोलने वाले कि शरीर की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आप कम बोलो, धीरे बोलो, उसी तरह संकल्पों के गति अति होने से रूहानी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट होता है। जब हमारे अंदर में व्यर्थ संकल्प चलती है तो क्या होता है वो हम अनुभव करते हैं, और जब ज्ञान की है तो क्या होता है। जब संकल्प अधिक चलता है तो एनर्जी वेस्ट होती है, और ज्ञान की मनन चलती है तो एनर्जी बनता है। हम योद्धा हैं, युद्ध स्थल पे हैं, सामने दुश्मन खड़ा है, हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी बचा के रखना है। आजकल मौत सामने खड़ा है, इसलिए कोरोना महाराज से लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भी हमें भी क्या करना होगा, हमें भी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना होगा, मास्क को पहनना होगा, दो गज दूरी रखना है जरूरी को पालन करना होगा और डॉक्टर साहब की आज्ञा की पालन करनी होगी। जब कोई जोर से बोलता है, अधिक बोलता है, तो अपने आप को खाली खाली, अपनी उनकी माथा खाली खाली अपने आप को अनुभव करते कि मेरी माथा खाली खाली हो गई है। वैसे हमारे अंदर में अगर परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, बिना काम वाली संकल्प अगर चलती है तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के बदले अवनति होती है और हम अपने आप में आध्यात्मिकता में खाली खाली अनुभव करते, शक्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जैसे कोई रोगी बीमार होता है, जैसे कोई रोगी बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब जांच करके देख के इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाते हैं और कुछ परहेज बताते हैं। वैसे उस हिसाब से इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाते हैं और परहेज बताते हैं और परहेज के हिसाब से अगर चलते हैं मरीज तो मरीज को ठीक होता है। अगर परहेज से नहीं चलते वो तो वो इंजेक्शन और ग्लूकोज की ताकत थोड़े दिन रहते फिर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। उसी तरह इस आध्यात्मिक मार्ग में बाबा के बच्चे इस जीवन में इंजेक्शन लगाना, अर्थात क्या, इस मार्ग में इंजेक्शन लगाना अर्थात बाबा ने जो सोमान दिया है सोमान को बुद्धि में लाने की प्रयत्न करना, मुरली के पॉइंट को बुद्धि में लाने की प्रयत्न करना, कोई भी परिस्थिति आई उस परिस्थिति को, चाहे जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं बुद्धि में, उस व्यर्थ संकल्प की संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने की, ब्रेक लगाने की कोशिश करना, अर्थात इंजेक्शन लगाना। अगर संगठन प्रमाण, विशेष प्रोग्राम प्रमाण, योग भट्टी करना, तपस्या करना, ये है ग्लूकोज चढ़ाना। अगर सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर के कहने अनुसार अगर हमने इंजेक्शन तो लगाया, ग्लूकोज तो चढ़ाया, अगर हमारे अंदर जो लीकेज है, कमी कमजोरी है, परहेज जो बताया परहेज नहीं खाया, समय पे फल खाने के लिए, समय पे भोजन खाने के लिए, समय पे दवाई खाने के लिए कहा और नहीं किया, तो हम जल्दी ही बीमार फिर से पड़ सकते हैं, कमज़ोर बन सकते हैं। इसलिए सुप्रीम डॉक्टर का, सुप्रीम सर्जन का कहना है, इंजेक्शन के साथ, सोमान की याद के साथ, मुरली की पॉइंट याद करने के साथ, फुल स्टॉप लगाने के साथ, विशेष प्रोग्राम अनुसार भट्टी करने के साथ, हमारे अंदर जो सूक्ष्म लेकेज है, सूक्ष्म जो कमजोरी है, उसको चेक करके उसको बंद करना है और अपनी स्व उन्नति के लिए जो बाबा ने श्रीमत दिया है, जो बाबा ने आज्ञा दिया है कि पल पल, हर क्षण, श्वासो श्वास, हर घड़ी मुझे याद करो, मेरी श्रीमत को याद करो, मेरी बताए हुए महावाक्य को स्मृति में लाओ, तब हमारी एनर्जी, हमारे अंदर शक्ति बनी रहेगी, हमारे अंदर की कमजोरी दूर हो जाएगा। सिर्फ इंजेक्शन और दवाई लेने से काम नहीं चलेगा, परहेज जरूरी है, ज़्यादा आराम करने से भी बीमारी बढ़ जाती है, वॉकिंग एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर आराम करना हो तो डॉक्टर साहब पहले से बोल देते कि बेड रेस्ट है आपका। हाँ, परहेज बोला ना, जो डॉक्टर ने फल बोला दूध ना, हाँ एक्सरसाइज, वो भी डॉक्टर्स की सलाह अनुसार, फिजियोथेरेपिस्ट से लेना पड़ेगा। वर्तमान समय हमें एनर्जी बना के रखने के लिए अपनी लीकेज को तो पूरा करना ही है, बंद करना ही है, अपने साथ बाबा को रखना है, अपने आप को सदा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहना है, हमेशा साथ में रखना है, सदा हमारे संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से फलीभूत हो, संकल्प रूपी बीज असफलता के सफलता के बीज ना हो, ऐसा ना हो, ये बात हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हमें संकल्प को धैर्यवत बनाना है, अपने रूहानी एनर्जी को बचा के रखना है, उससे अपने आप को भरपूर करके रखना है। बताते हैं, अगर हमारे संकल्प धैर्यवत नहीं है, हमारे अंदर में संकल्प चलते ही रहते हैं, उसको बट के जंगल के समान बाबा ने बताया है। बट का जंगल अर्थात बांसों का जंगल। बांस के जंगल में क्या होता है, बांस एक से अनेक पैदा होते हैं। एक बांस का पेड़ लगाएंगे, उससे अनेक पैदा होता है, और अनेक एक आपस में टकराकर आग पैदा करती है और अपने आप को सर्वनाश करती है। उसी तरह हमारे अंदर भी अगर एक से अनेक प्रकार के संकल्प अगर चलते रहते हैं, व्यर्थ चलते हैं, पर चिंतन के चलते, पर दर्शन के चलते हैं, एक से अनेक चलता ही रहता है, अगर उन पे हमने कंट्रोल नहीं किया, उनको हमने नहीं रोका, उनकी दिशा को हमने नहीं बदला, तो हमारे अंदर एक से अनेक आपस में लड़ के, आपस में टकरा के हमको ही परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्मृति स्वरूप बनकर अपने संकल्प को धैर्यवत बनाओ। संकल्प, एक ही संकल्प ने हमारे जीवन को क्या बना दिया, एक ही संकल्प ने हमारे जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो। देह नहीं आत्मा समझने से हमारे जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बन गया। तो संकल्प एनर्जी भी है तो खजाना भी है। एक छोटी सी कहानी याद आती है जो पहले सुनानी थी, वो अभी सुना देते हैं। संकल्प क्या होता है और रूहानी एनर्जी क्या होती है उसके के प्रसंग में है। एक राज्य में राजा शाम के समय परिक्रमा कर रहे थे, वैसे भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, राज्य के घूमने के निकले थे। तो एक जगह एक सन्यासी, एक योगी मिट्टी में बैठ के मिट्टी के साथ खेल रहा था। राजा की नज़र उस सन्यासी पे पड़ता है और राजा को दया आती है कि ये सन्यासी है, एक योगी है, एक फकीर है, और देश, ये इनके जीवन कितनी महान है और इनके शायद जीवन में कुछ कमी है, इसीलिए इस मिट्टी में लेटा हुआ है, खेल रहा है मिट्टी के साथ, शायद इनकी कुछ मदद की ज़रूरत है, मैं जाके इनकी कुछ मदद करूँ और अपने महल में ले जाके इनके सब कुछ दूँ, जाके वो आराम से तपस्या कर सके। राजा सारथी को रथ रोकने के लिए बोलते हैं और सारथी रथ रोकते हैं। राजा उतर के उस योगी फकीर के पास, सन्यासी के पास जाते हैं और सन्यासी को बहुत विनती के साथ हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे महात्मा, हे योगी, आपको यहाँ मैं समझता हूँ कि तकलीफ होता होगा, कमी की महसूसता होती होगी, आप हमारे महल में चलिए, आराम से रहिए, आराम से खाइए पिए और आराम से हमारे महल में रह के तपस्या कीजिए, ताकि हमारे महल के लिए, हमारे राज कारोबार के लिए भी हमें मदद मिलेगी। आप जैसे महान विभूति अगर आएंगे तो रहेंगे तो फकीर सन्यासी राजन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है राजा को देख के, और फकीर सन्यासी कहते हैं, राजन आप मुझे लेके जाना चाहते हैं? तो बोला, जी अगर आपको मुझे लेके जाना है तो हमारी चार शर्तें आपको माननी होगी। हमारी पहला शर्त, राजन कहते फिर बताइए क्या शर्त है। अंदर भी लगता है कि इतनी बेचारा दीनहीन है और इनको मैं मदद कर रहा हूँ और ये बोल रहे हैं मुझे शर्त पहले मानो, फिर भी कोई बात नहीं, पूछ ली, बात कर ली तो पूछ लेते हैं। तो बोलते हैं, राजन अगर मुझे लेके चलना है तो मैं आपके पास जाऊँगा तो मैं सोऊंगा लेकिन आप कभी नहीं सोएंगे, आप हमेशा जगे रहेंगे। राजन को सुन के बड़ा मुश्किल लगता है कि ये कैसा सन्यासी है। कहते कोई बात नहीं, दूसरा बताइए। बोलता है राजन, मैं अगर आपके पास जाऊंगा तो दूसरा मेरा शर्त है, मैं खाऊंगा लेकिन आप नहीं खाएंगे। बोलते ये कैसी बात है भाई। बाकी फिर भी बोलते तीसरी बताइए, कोई बात नहीं सुन लेते हैं। तीसरी बात है कि मैं पहनूंगा लेकिन आप कुछ भी नहीं पहनेंगे। चौथी बात राजन पहते, चौथी बता दीजिए कोई बात नहीं। चौथी बात कहते हैं कि मैं अगर आपके महल में जाऊंगा तो आप सदा मेरे साथ रहेंगे, आप दूसरे किसी के साथ नहीं जाएंगे। राजा को बहुत अटपटा लगता है, कहते ये कैसी बात है, आप हम हमारे महल में जाएंगे, आप रहेंगे, आप खाएंगे, आप पिएंगे, आप आराम से तपस्या करेंगे, अगर हम आपके साथ ही बैठ गया, अगर हम नहीं खाना खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम नहीं पहनेंगे तो लोग हमको क्या कहेगा, पागल कहेगा, अगर हम आपके साथ नहीं सोएंगे तो हमारा नींद डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर हम हमारा मानसिकता असंतुलन हो जाएगा, अगर आपके साथ हम रह गए तो हम राज्य कारोबार कौन करेगा। तो बोलते राजन, आप तो एक राज्य के राजा हो जो आप हमें इतना समय नहीं दे सकते, परंतु आप एक राज्य के बादशाह हो, परंतु मेरा बादशाह कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ मुझे खिलाता है। मेरा बादशाह वो सोता नहीं, वो जगता है और मुझे सुलाता है। मेरा बादशाह वो कुछ पहनता नहीं, मुझे पहनाता है। और मेरा बादशाह मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाता है, भले मैं उनको छोड़ देता हूं तो मैं आपके राज्य में कैसे जाऊं, मेरा बादशाह तो आपसे भी ऊंचा है जो आपका भी बादशाह है। तो उस योगी, उन फकीर को, उन सन्यासी को कौन सी शक्ति मिली हुई थी? रूहानी शक्ति मिली हुई थी। तो हमें भी वो बादशाह वो शक्ति से भर दिया है, वो शक्ति दे रहे हैं, हमें उस शक्ति को अनुभव करना है और दूसरे बादशाहों के पास हमें नहीं जाना है। आगे बाबा ने मुरली में बताए हैं, संकल्प शक्ति भी है तो खजाना, एनर्जी भी है तो खजाना भी है। आगे बता रहे हैं कि जैसे आत्माएं अनेक होते हैं लेकिन महान आत्माएं थोड़े होते हैं, वैसे आप बच्चों के अंदर भी संकल्प तो अनेक आएंगे लेकिन अनेक संकल्पों में को कंट्रोल कर ऐसा संकल्प करो जो लोगों को कल्याण हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, और बोल भी श्रेष्ठ होना चाहिए, थोड़े बोल हो, वरदानी बोल हो, कल्याण के बोल हो। परमात्मा एक होते हैं, महान आत्माएं थोड़े होते हैं, वैसे आप महावीर महारथी को के बोल गिनती के हो, संकल्प गिनती के हो, जो सामने वाला क्या कहे कि हमारे प्रति, हमारे लिए वरदानी बोल, हमारे कल्याण की बोल बोले और हमारे लिए सिद्धि स्वरूप संकल्प करें। अगर हम अपने संकल्पों को अगर धैर्यवत बनाते हैं, हम अपने बोल पे कंट्रोल करते हैं, ना अति बोलना है ना मौन में रहना है, हमें कंट्रोल बोल बोलना है। अगर हम कंट्रोल बोल बोलते हैं उससे हम औरों को हम कल्याण कर सकते हैं, और तभी हम रूहानी एनर्जी जमा करके और जिस्मानी एनर्जी वाला जो पांच विकार रावण के साथ जो हमें युद्ध करना है, युद्ध के स्थल पे हम युद्ध करके हम विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कमांडर हमारा कौन है, सुप्रीम फादर है, उनसे शक्तिवान कोई नहीं है, इसलिए हम उनको हाथ और साथ लेके चलते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो उसमें बताया गया था कि मुरली को चार भाग में बांटना है, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। वैसे टाइम होने को जा रहा है, हम दो मिनट में उसको हम बताएंगे, दो मिनट एक मिनट के अंदर में। इसके अंदर में ज्ञान की पॉइंट है कि एक मिनट में एक संकल्प करना, उससे क्या फायदा होती है, संकल्प को धैर्यवत करने की निशानी है। एक मिनट में एक संकल्प से दूसरे संकल्प, दूसरे से तीसरे संकल्प आना, कम बोलो, धीरे बोलो, ये ज्ञान की पॉइंट बाबा ने बताया है। धारणा की पॉइंट है एक बाप दूसरा न कोई जीवन में, एक नामी एक रस स्थिति, ये धारणा की पॉइंट। ज्ञान हो गई, धारणा हो गई। सेवा करना कैसे करना है, हमारे बोल कैसा बोल हो, महावाक्य वाली बोल हो, दूसरों को कल्याण करने वाली बोल हो, हमारे संकल्प दूसरों सिद्धि स्वरूप संकल्प हो, जिनको जरूरत हो जिस चीज के, वो हम अपने संकल्पों से उनको हम पूरा कर सके। तो ज्ञान भी हो गई, धारणा भी हो गई, सेवा हो गई, योग रह गया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सेवा की पॉइंट हो गई। अच्छा, ओम शांति।